SBS उर्दू से मैं हूं एहसान खान। एक हाथ में गैम्बल और उससे जुड़ा मोबाइल कैमरा तो दूसरे हाथ से मैनुअल व्हीलचेयर को आगे खिसकाना। तलाश है कुछ ऐसे मनाजिर की जिसे वो अपने मोबाइल कैमरे में अक्स बंद करके दुनिया के सामने ला सके। इस तगोदो में मसरूफ ये लड़की दुनिया को कुछ दिखाने की ठान ले तो अपनी माजूरी को भी कमजोरी नहीं बनने देती। इरादे की तकमील के लिए हर रुकावट को अबूर कर जाती है। ये 19 साला कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्पेशल पर्सन मोमिना सिप्तैन है। स्पाइना बाइफिडा का शिकार मोमिना सिप्तैन माशरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं। अपनी जिंदगी जीना चाहती और स्पेशल पर्सन की जिंदगियों और उनके मसाइल को दुनिया के सामने लाने के लिए बतौर कंटेंट क्रिएटर काम करती हैं। SBS उर्दू से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मोमिना सिप्तैन ने कहा कि बीमारी ऐसी थी कि तालीमी इदारों ने भी दाखिला देने से इनकार किया। शहर तब्दील किया लेकिन निज़ाम तो वही था। बीमारी और रवैयों की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सकी। माशरे की बेहसी ने मजीद दिल बर्दाश्त किया।
व्हीलचेयर को मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था बट आई डोंट थिंक सो कि व्हीलचेयर पर्सन्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। और ये चीज़ मैंने सफ़र की है बाकायदा इन 11 सालों में। जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हीलचेयर पे स्कूल के लिए एडमिशन के लिए गई तो मुझे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया कि हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एडमिशन नहीं दे सकते। और कहीं एक्सेसिबल नहीं था, कहीं कुछ और बहाना, ऐसे बहानों के अंदर मैं पढ़ ही नहीं पाई। फिर हम कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और इस्लामाबाद जाने के बाद मुझे एक स्कूल मिला जो एक्सेसिबल था। तो मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि मुझे पढ़ना है ताकि मैं आगे कुछ बन सकूं। मैं ऐसे सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती एक बेड के ऊपर। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल उस चीज़ की इजाज़त दी। मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया बट क्योंकि डिसेबिलिटी को मैनेज करना नहीं आता था तो समहाउ कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते गए और मेरी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सर्जरीज कि वो मैं इस हालत में नहीं रही कि मैं रोज़ स्कूल जा सकूँ। मेरी पढ़ाई वहाँ से छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद और डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं खाली एक कमरे में लेटी हुई बेड पे मैंने अपना एक छत को देखते हुए 5.5 साल गुजारे हैं। उन 5.5 सालों में मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे कि मैंने ये करना है, मैंने कुछ बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। मेरे सारे नॉर्मल ड्रीम्स थे जो मैं पूरे नहीं कर सकती थी।
जब हमने मोमिना सिप्तैन से पूछा कि उन्हें कॉन्टेंट क्रिएटर बनने का ख्याल ही क्यों आया तो मोमिना सिप्तैन ने हमें कुछ यूँ जवाब दिया।
रही बात मैं इस फील्ड की तरफ क्यों आई, क्योंकि मुझे था कि यार पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काम तो बहुत कर रहे हैं पर उनको दिखा कौन रहा है? कोई भी नहीं दिखा रहा। सबको ज़िंदगी में सब अपनी अपनी तमसरूफ़ हैं, इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं कि कोई इस चीज़ पे गौर ही नहीं करता। तो मुझे इन लोगों को दिखाना था, अपने जैसे बंदों के लिए काम करना था। कहीं ना कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में वो टैलेंट छुपे हुए होते हैं जो शो नहीं होते। तो मुझे था कि इसको शो करना है। इस वजह से मैं मीडिया की फील्ड में आई और मैंने इसको सीधा कैमरे को ही पकड़ा आके रील वगैरह इसी चीज़ को चूज़ किया ताकि ये चीज़ हमें दिखे। एंड ऑब्वियसली एक चीज़ के बारे में पैशनेट हो, आपने शुरू से आपको शौक है वो करने का, तो आपको खुद ही उस चीज़ में मज़ा आता है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, जिस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक सो कि आप वो कंटिन्यू करते हो। आप कोई चीज़ कंटिन्यू करते हो बिकॉज आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको पता होता है कि आपको ये काम आता है। तो मेरे दिमाग में हुआ कि नहीं यार ये तो दिखाने वाली चीज़ है। और मुझे क्योंकि मैंने 5.5 साल कुछ भी नहीं किया, खाली इंस्टा स्क्रोल किया, यूट्यूब स्क्रोल किया, मोबाइल के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मैं खाली मोबाइल में ही लगी रही हूँ और बस ऐसे ही मैंने अपने साल ज़ाया किए। तो मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक़ था तो मैंने ऐसी एक रैंडम रील बना दी। सारे बच्चे अपना स्पोर्ट्स कुछ खेल रहे थे, कोई घूम रहे थे, बहुत छोटे बच्चे भी, बहुत बड़े बच्चे भी, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई रैकेट खेल रहा था। तो मैंने उसकी एक नॉर्मल सी रील बना के, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स पे काम करता है, इवन तो वो मैनेज भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ करते हैं, विंग्स ऑन व्हील। तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी जो एक नॉर्मल सी रील थी जिसमें सब अपना अपना खेल रहे थे। मैंने वो बना के डाल दी जो इतना प्यारा कॉन्टेंट बन के बाहर आया, जो उसमें सॉन्ग था जो वो एडिट हुई थी, तो वो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि आप विंग्स ऑन व्हील ज्वाइन करो। और इसके बाद से मैंने वहाँ रील्स बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे खुद से मेरा जो होता था वो ज़्यादातर माइंड होता था कि मैं ऐसी रील बनाऊंगी, उसको ऐसे एडिट करूंगी। तो मैं शूट भी खुद ही करती थी, एडिट भी खुद ही करती थी और उसका कॉन्टेंट भी खुद सोच के बनाती थी। तो अभी तक भी जितनी भी हमारे विंग्स और मील पे रील्स हैं वो सब मैंने खुद दिमाग से बनाई है कि यार इसको ऐसे बना लेते, इसको ऐसे कर लेते, बट आई डिडंट न्यू कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी या वो मैं कैसे पोर्ट्रे कर लूँगी।
मोमिना कहती हैं, अगर मैं चलने फिरने से माजूर हूँ तो खुदा ने मुझे भरपूर जहनी सलाहियतों से नवाजा है। तंग नज़र लोगों की तनकीद का जवाब व्हीलचेयर पर बैठकर अपने टैलेंट से देती हूँ।
मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उन सब पे, बट सेम थिंग के जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ बुरी भी होती हैं। जब मैं सोसाइटी में, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं फ़ोन को हैंडल करने के, कैमरा वगैरह हैंडल करने के, मैं उतने बड़े उस पर नहीं करती तो मुझे गिम्बल वगैरह ही हैंडल करना पड़ता है, तो उसके वजह से एक मैनुअल व्हीलचेयर को के साथ उस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो लोग मुझे बड़ा बोलते थे कि तुम व्हीलचेयर पे होती हो, तुम इसको छोड़ दो, तुमसे कैमरा नहीं हैंडल होगा, तुम इसको नहीं करो, तुम कोई और फील्ड ढूंढो, मीडिया की फील्ड थोड़ी ना व्हीलचेयर वालों के लिए, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमें सुन के बड़ा अजीब लगता था। बट आई वॉन्ट टू प्रूव इट कि व्हीलचेयर पे रह के भी ये काम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा व्हीलचेयर पे तो उसको उस चीज़ का चांस ही ना मिले। तो मैं उस चीज़ पर रही अटक गई कि नहीं, मैंने यही काम करना है, और इसकी वजह से मैं पीछे नहीं हटी इसको लेके, और स्टिल मुझे समहाउ डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट अब मुझे थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है इसको मैनेज करने की। तो मीडिया पे इस चीज़ को लाने का मेरा विजन यही था कि यार दिखना चाहिए कि ये टैलेंट है और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी में है। अल्लाह ताला जब हमसे कोई एक चीज़ लेता है ना, तो हमें कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल के देता है। तो आई थिंक अगर अल्लाह ताला ने हमारे पाँव लिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार उसका दिमाग भी नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है अगर कोई मौका दे। वही बात है ना कि हमें मौका ही नहीं देते, इस चीज़ को साइड पे कर दो यार, ये तो व्हीलचेयर पे ना।
मोमना सिप्तैन की कामयाबी के पीछे जहां उनके पुख्ता इरादे हैं, वहीं उनके अहले खाना ने भी मोमना के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया।
मेरी फैमिली का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था एक्चुअली, मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली प्राउड है। आज मेरे फादर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं कुछ करती हूँ, मैं कहीं बाहर जाके काम कर रही हूँ, सबको दिख रहा है मेरा, मीडिया पे आना, उस चीज़ को हाईलाइट करना, उस चीज़ को शूट करना। मेरी फैमिली बेइंतहा सपोर्टिव है, स्पेशली माई फादर, क्योंकि ज़्यादातर आपके साथ ऐसा होता है ना, एक एक तो लड़की हो, ऊपर से व्हीलचेयर पे हो, और फिर मीडिया की फील्ड में। आई थिंक ये तीनों ही चीज़ें थोड़ी सी घूम के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं एक फैमिली के लिए, बट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरा भाई, मेरी मामा, सब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर सपोर्ट करते थे कि यू कैन डू इट, नहीं कोई मसला नहीं है। और ऐसा हो जाता है कि कभी हम लेट भी हो जाते हैं तो मेरे फादर मेरे साथ मुझे पिक करने आते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम, उनको कोई मसला नहीं है, बल्कि वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे 11 साल एक बेड पे देखा है। उन्होंने देखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ना एक एक मिनट जीने के लिए रोती थी कि बस मुझे कमरे से बाहर निकालो। तो अब वो जब मुझे देखते हैं कि मैं पूरी हर जगह जाती हूँ, उस चीज़ को कवर करती हूँ, कोई भी मीडिया कवरेज के लिए कहीं चले गए, किसी इवेंट पे चले गए, उसको कवर कर लिया, तो आई थिंक वो मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है।
मोमिना सिप्तैन ने हुकूमत पाकिस्तान से शिकवा करते हुए कहा कि माजूर अफराद के लिए कोटा तो मुख्तस कर दिया जाता है, लेकिन माजूर अफराद के लिए नौकरियों का हसूल किसी सुहाने ख्वाब से कम नहीं। स्पेशल पर्सन मोमिना सिप्तैन ने निजी और सरकारी इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि बेशतर मकामात पर माजूरों की आमदोरफ्त के लिए रैम्प की सहूलत मौजूद नहीं होती, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इन्हीं सहूलियात का फुकदान है।
आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे जो बोलते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कोटा 5% कोटा है, जो हमारा डीपी डिपार्टमेंट में अलग से बन चुका है, उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो अलग से चेयर दी हुई है उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते नहीं हैं, सिर्फ नाम है, पर वहाँ पर कोई भी फिजिकल या ब्लाइंड या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ एक निकला हुआ है कि कोटा मोबिलिटी में भी हमें सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारे लिए बसेज में लिखे भी तो हैं कि फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर वो सीट ऑलरेडी बुकड होती है, उस पर कोई ना कोई बैठा होता है, और अगर हम वहाँ चढ़ें भी तो यार चढ़ने के लिए कोई रैंप या कुछ होना चाहिए, वो भी बसेस एक्सेसिबल नहीं है। तो जो चीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नाम पे बना दी है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी एक्सेसिबल है कि हम उसको उसको भी ले सकें। तो वो सिर्फ एक कही हुई बात ही है कि 5% कोटा है और ये है, और आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कोई भी अभी भी अगर जाके हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ देखें, तो वहाँ कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी काम नहीं करता। मेन इशू जो अभी तक मुझे आया है एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मीडिया की फील्ड में, तो आई थिंक वो एक्सेसिबिलिटी का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कहीं जगह चले जाओ तो वहाँ या तो लिफ्ट लगी भी होती है तो वो चल नहीं रही होती, या तो उधर स्टेयर्स होती हैं, एंड बिकॉज एज अ वुमन मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है कि कोई मुझे उठा के ऊपर लेके जा रहा है, तो मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ कहीं आने जाने से जो स्टेयर्स वाली जगह होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे बड़ी मुश्किल से हमें मॉल ही एक्सेसिबल मिलते हैं, आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कुछ एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती है। कहीं बैंक भी चले जाओ तो वहाँ भी बड़ी बहुत कम बैंक्स हैं जिधर स्लोप या रैंप बना होता है, अदरवाइज हम वहाँ पे भी उठा उठा के ख्वारी हो रहे होते हैं। तो आई थिंक कि वो मेन इशू है एक्सेसिबिलिटी का पाकिस्तान के अंदर।